भर गालिब यही भूल करता है, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता है। जी हाँ, हमें अपने आप को फिर से देखना चाहिए, अपनी आंखों पर का चश्मा हटाकर। अक्सर हम अपनी नाकामियों के लिए लोगों को जिम्मेवार ठहराते हैं और अक्सर कुछ ना कर पाने का पूरा दोषारोपण परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हम अपने अंदर झांक कर कभी देखते ही नहीं। पर वो कहते हैं ना कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी जद्दोजहद कर लो, जब अपने अंदर कुछ छूट रहा हो, टूट रहा हो, बिखर रहा हो, तो बाहर से उसे कैसे पकड़ेंगे और संभालेंगे। कोशिश तो अंदर से ही करनी होगी और कोशिश आप से शुरू होती है। तो आज से अपनी खुशियों की चाबी खुद बनिए। अपनी खुशियों के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर न रहें, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है। और श्रोताओं, आज ही राष्ट्रीय प्रसारक दिवस है। भारत में रेडियो प्रसारण को 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इस दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा, जैसा कि आप आज हमें सुन ही रहे हैं आकाशवाणी के नाम से, आप सभी का सबसे विश्वसनीय और पुराना लोक प्रसारक। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शिफाली।
Hello Akarshita and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. So we are celebrating National Broadcasting Day, and why are we celebrating it? Not just to, you know, talk about the technological progress that radio has made, but also about its enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation such as ours. Right, Akarshita?
Ji.
So, इसी के साथ we bring you our ever exciting daily news magazine program आज सवेरे, wherein over the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is 23rd of July. So, let's begin with the headlines first.
जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की 5.6% तक ले आई है।
The government has said that the unemployment rate in the country has been showing a declining trend over the recent years. In a written reply in Lok Sabha, Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje said that as per the latest available annual periodic labour force survey PLFS reports, the estimated unemployment rate for persons of age 15 years and above was 4.2% in 2020-21, 4.1% in 2021-22 and 3.2% during 2022-23.
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भौतिकी के प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के फैसले पर अपनी राय देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेषज्ञ टीम को आज दोपहर 12 बजे तक शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के समूह में भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने वाले पर सवाल उठाया गया था। इसमें कहा गया था कि 44 उम्मीदवारों को अस्पष्ट प्रश्न के कारण पूर्ण अंक मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि एनटीए का प्रतिपूरक अंक देने का निर्णय उसके अपने निर्देश के खिलाफ है, जिसमें छात्रों को नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का पालन करने के लिए कहा गया है। इस मामले में आज दोबारा सुनवाई होगी।
The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra during the next 2 days. In several parts in north, northeast, central and western parts, very heavy rainfall may occur till tomorrow, while the remaining parts are likely to receive heavy rainfall till Thursday. The weather agency said that above normal temperatures with high humidity are likely to prevail over Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi today.
महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए में श्रीलंका के दाम्बुला में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अभी ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने अपने पिछले मुकाबलों में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को हराया है। एक अन्य मुकाबले में इसी मैदान पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात आमने सामने होंगे। ये मैच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा।
And the International Olympic Committee, IOC, Executive Board has decided to award India's first individual Olympic gold medalist, Abhinav Bindra, with the Olympic Order for his outstanding services to the Olympic movement. The award will be given during the 142nd IOC session in Paris on 10th of August 2024. The Olympic Order is the highest award of the IOC given for distinguished contributions to the Olympic movement. 41-year-old Bindra won the men's 10-meter air rifle event at the 2008 Beijing Games and became the first Indian individual to win an Olympic gold medal. Bindra has also been a member of the IOC Athlete Commission since 2018. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the ace Indian shooter for the honour. In a social media post, Mr. Mandavia said that his achievement has filled the country with pride and is truly well-deserved. He added that Mr. Bindra's name alone has inspired generations of shooters and Olympians.
और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं शिफाली।
Yes, Akarshita, let's begin with Chennai. Lieutenant General Karan Bir Singh Brar, General Officer Commanding of Dakshin Bharat Area of the Indian Army, inaugurated a desalination plant at Fort St. George in Chennai. The plant was constructed by Military Engineering Services of the Indian Army. The project ensures rejuvenating wells and desalinating the water, thus ensuring clean and healthy water to troops in the cantonment. And now news from Bengaluru Metro. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has said that 30 TMC of Cauvery River water has been released to Tamil Nadu from the reservoirs till now. Speaking to media persons in Bengaluru and later in Mandya, the senior minister said that every day 51,000 cusecs of water is released to Tamil Nadu and another 10 TMC of water remains to be released in line with the quota in normal rain month. Shivakumar also said that the officials have been told to fill up all the 1,657 tanks in the Cauvery Basin area in the state. The farmers have taken up sowing in 2 lakh hectares. During the sowing season, 5.90 lakh quintal seeds, 27 lakh tons of fertilizers and 25,000 crore rupees of crop loans are distributed to about 30 lakh farmers through the cooperatives. He informed that Kaveri Aarti custom will be introduced on the lines of Ganga Aarti in Varanasi. And now moving to news from Hyderabad. Telangana state government has announced an addition of 163 medical procedures to the Ravage Arogya Shri Health Scheme. State Health Minister Sidamodar Rajanarsimha has announced this and also a 20% hike in packages provided to hospitals to implement the scheme. The increased cost of services, the extension of coverage cost from 5 lakh to 10 lakh rupees as announced during December last year. The increased number of procedures and the extension of the limit will together cost the exchequer 487 crore rupees. An official release stated that the government has decided to increase the budget by 54% for the same. In the new 163 medical procedures, 98 will be provided via the Ayushman Bharat scheme and 65 by the state government's Arogya Shri. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Akarshita.
Ji. दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में रिंग रोड पर सड़क के सूत्रीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत प्रेमबाड़ी पुल में पुल से पंजाबी बाग गोलचक्कर तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत की जाएगी। मंत्री आतिशी ने बताया कि ये सड़क रिंग रोड का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग रोजाना लाखों यात्री करते हैं। उन्होंने सड़क के जल्द से जल्द मरम्मत के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारी ट्रैफिक के कारण सड़क की ऊपरी सतह पर कई जगह दरार देखी गई थी जिसके बाद सड़क की मरम्मत करने का निर्णय लिया गया। वहीं दिल्ली नगर निगम द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निगम के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 2,370 स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की जांच की गई जिसमें 360 स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन का पता चला और उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। निगम ने बताया है कि उल्लंघन करने वाले 235 संस्थानों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और 67 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कल नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ कुल 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन के साथ ही समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल पर 3 सप्ताह के अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को एआई और एमएल के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में 185 कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की है। इन शिविरों में कांवड़ यात्रियों के लिए खाने पीने, स्वास्थ्य जांच, शौचालय और उनके ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया है कि सभी शिविरों को वाटरप्रूफ टेंटों से तैयार किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन 25 जुलाई के बाद से शुरू होगा और उससे पहले सभी कांवड़ शिविर बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शिविरों की व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। और अब करते हैं मुंबई का रुख। मुंबई में अखिल भारतीय उद्योग संघ ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इस वर्ष के लिए 6.5 से 7% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक आशावादी तस्वीर पेश करता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ विजय कलंत्री ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि सर्वेक्षण में भारत को दुनिया का वित्तीय सेवा केंद्र बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सही पहचाना है और एमएसएमई क्षेत्र के विनियमन और डिजिटलीकरण पर जोर दिया है। अवैध फेरी वालों की समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकारी ऐसे मामलों में असहाय होने का दावा नहीं कर सकते। अवैध फेरी वालों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से तंत्र के ध्वस्त होने से मुंबई पुलिस और ग्रेटर मुंबई नगर निगम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो नागरिक कानून का पालन करना चाहते हैं वे इस समस्या के कारण पीड़ित हैं। जस्टिस एमएस सोनका और कमल खता की खंडपीठ कई दुकानदारों की शिकायतों पर आधारित एक स्व प्रेरणा याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि उनकी दुकानों के सामने कई अनाधिकृत स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं ग्रेटर मुंबई नगर निगम निकट भविष्य में 4 एकड़ भूमि पर 3,500 से अधिक पेड़ लगाने की योजना बना रहा है। आयुक्त भूषण गंगरानी ने कहा है कि निगम ने इस विशेष वृक्षारोपण मिशन के लिए कुर्ला, बोरीवली और पवई क्षेत्र में 3 भूखंडों की पहचान की है और इस तरह के वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदान केंद्रों के आवंटन में हुई त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया है। श्री बावनकुले ने पत्र में कहा कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में जारी निर्देशों का जिले अभी क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि एक ही सोसाइटी में रहने वाले मतदाताओं को अलग अलग मतदान केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि वे निर्देश जारी करें कि जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हो, वहां एक भवन या परिसर में दो मतदान केंद्र या एक सहायक बूथ स्थापित किए जाएं। और वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज एक बैठक होगी। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। बैठक में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। और आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। है ना शिफाली, कल बारिश हुई तो ऐसा लगा कि उमस से कितनी राहत मिली।
बिल्कुल।
और आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने और बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
एंड डियर लिसनर्स, लेट्स हैव अ लुक एट द वेदर ऑफ आवर सदर्न सिटीज नाउ। Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
सो गोइंग वे बैक इन टाइम, इन द ईयर 1555 ऑन दिस डे हुमायूं रीकंकर्ड दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग शेर शाह एलियस सिकंदर सूरी इन माचीवाड़ा एंड सरहिंद बैटल्स। एंड इन द ईयर 1904 द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टार्टेड फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट कार्स ऑन इट्स मेल ट्रेन्स। एंड इन 1993 Indian National Satellite INSAT-2B, second satellite in the INSAT-2 series, was launched. Now, this is more operational multipurpose communication and enhanced meteorology satellite, and this is still in service. In 1996, India's admission to Asian Regional Forum was endorsed by foreign ministers of the group at Jakarta. And in the year 1997, India decided to sign UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
और 2000 में आज के ही दिन व्यापक घोषणाओं के साथ नागो में हुए समूह 8 का 26वां शिखर सम्मेलन संपन्न। और 2001 में मेघावती सुकोर्णा पुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। वहीं 2007 में आज के ही दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जहीर शाह का निधन। और 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामवरण यादव को अपना इस्तीफा सौंपा। और श्रोताओं, अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन है। तो आज महमूद अली की पुण्यतिथि है। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा हिन्दी फिल्मों में काम किया। अपने बहुरंगीय किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिका कर रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति समर्पित थे। अपने बहुमुखी अभिनय और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी। महमूद को पहला ब्रेक 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था, जिसमें उन्होंने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई थी। 1961 की ससुराल उनके करियर की अहम फिल्म थी, जिसके जरिए बतौर हास्य कलाकार स्थापित होने में उन्हें मदद मिली। वहीं 1965 की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में उन्हें कॉमेडियन के साथ साथ प्रमुख भूमिका निभाने का भी मौका मिला। उनकी प्रमुख फिल्में थी प्यार किए जा, पड़ोसन, कुंवारा बाप। उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में उनके ये गीत।
हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मरत जात। अरे ए, 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 चतुर नार करके सिंगार परसा गगरिसा दर सदप पर दर गर ददप पवगर चतुर नार करके।
So dear listeners, Mehmood also went on to act in lead roles as well, but he was more appreciated for his comedy, जैसा कि आकर्षिता ने हमें बताया, and most of his comedy was in the Hyderabad region's Urdu accent, so that was also interesting. And he was really good at playing the film hero's friend who would help him out of sticky situations with his street smart ways. So we can say that Mehmood knew exactly how to tickle the film viewer's funny bone.
मैं आजाद हूँ, आजाद रहूँगा और आजाद ही मरूँगा। ये नारा था भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का। आज उनकी जयंती है। मात्र 24 साल की उम्र में जो युवाओं के लिए जिंदगी के सपने देखने की होती है, उसमें चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। आप सोच सकते हैं शिफाली, हमारी उम्र अभी इतनी होगी और इस उम्र में वो, मतलब उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए दे दी। इतनी कम उम्र में वो जज्बा, वो पैशन, वो कहां से, वो डेडिकेशन और वो उस तरीके से देश के लिए वो जज्बा कहां से आता होगा।
अब कहां से आता होगा तो ये तो हम शायद इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं, बट हम इंस्पायर डेफिनेटली हो सकते हैं उनके इस जर्नी से। एंड आई वुड लाइक टू टेल लिसनर्स दैट आजाद वाज ड्रॉन इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एट अ वेरी यंग एज, एंड व्हेन अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस एट एज 15 व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही गेव हिज नेम एज आजाद एंड हिज एड्रेस एज prison. Determined never to be captured by police, Azad was constantly on the move. However, once he was betrayed to the police and in the gun battle that ensued, he was fatally shot. And dear listeners, talking about freedom fighters, today is also the birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak or Lokmanya Tilak, an Indian nationalist, teacher and an independence activist. He was one third of the Lal Bal Pal triumvirate. The British colonial authorities called him the father of the Indian unrest. He was also conferred with the title of Lokmanya, which means accepted by the people as their leader. And he is known for the quote in Marathi, Swaraj is my birthright and I shall have it.
आज शिव कुमार बटालवी की जयंती है। वे पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे जो उन रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेमी के दर्द का बखूबी चित्रण है। शिव कुमार बटालवी ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बना गए कि आज भारत में हर नौजवान के सीने में धड़कते हैं। उनके गीतों में बिरह की पीड़ा इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवित्री अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरह का सुल्तान नाम दे दिया। शिव कुमार बटालवी यानी पंजाब का वो शायर जिसके गीत हिंदी में न आकर भी वे बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जो गीत अपनी गुम हुई महबूबा के लिए बतौर इश्तरा लिखा था, वो जब फिल्मों तक पहुंचा तो मानो हर कोई उसकी महबूबा को ढूंढते हुए गा रहा था, एक कुड़ी जिदा नाम मोहम्मद गुम, मोहम्मद गुम है।
एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साज मुरादी सोनी फब्बत गुम है, गुम है, गुम।
And dear listeners, today is the death anniversary of Van Heflin Jr., an American theatre, radio and film actor. He played mostly character parts over the course of his film career, but during the 1940s, he had a string of roles as the leading man. Heflin won the Academy Award for Best Supporting Actor for his performance in Johnny Eager. And also, today is the death anniversary of Amy Winehouse, an English singer and songwriter. She was known for her deep, expressive contralto vocals and her eclectic mix of musical genres, including soul, rhythm and blues, reggae and jazz. Winehouse's debut album, Frank, was released in 2003. The songs Stronger Than Me and Rehab won her the Ivor Novello Award for Best Contemporary Song. At the 50th Grammy Awards in 2008, Amy Winehouse won 5 awards. So let's listen to her song, Rehab.
They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
आज लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की का जन्मदिन है. वे प्रतिभाशाली भारतीय वायलिन वादक, संगीतकार और दक्षिण भारतीय एवं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का कर्नाटक संगीत के साथ कुशल संयोजक करने वाले प्रतिभाशाली कलाकार हैं. इनके द्वारा संयोजित संगीत की धुनें अपने आप में अनोखी हैं. ये महज एक वायलिन वादक ही नहीं है, अपितु इन्हें संगीत के क्षेत्र में तकनीक और नए प्रयोगों के क्रांतिकारी परिवर्तनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है. एल सुब्रमण्यम ने बर्नार्डो बेर्टोलुकी की फिल्म लिटिल बुद्धा और कॉटन मैरी ऑफ मर्चेंट आइवरी के निर्माण में एकल वायलिन वादक के रूप में भी अपनी प्रस्तुति दी. इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में जैसे सलाम बॉम्बे और मिसिसिपा मसाला में भी संगीत दिया, जो मीरा नायर द्वारा निर्देशित हैं. उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. आइए सुनते हैं उनका ये वायलिन संगीत.
And dear listeners, today is the birth anniversary of Tara Shankar Bandyopadhyay, an Indian novelist who wrote in the Bengali language. He wrote several novels, storybooks, plays, essays, autobiographies, travel stories, and composed several songs as well. He was awarded Rabindra Puraskar, Sahitya Akademi Award, Gyanpeeth Award, Padma Shri, and Padma Bhushan. He was nominated for Nobel Prize in Literature in 1971 and posthumously in 1972. Also, dear listeners, today is the birthday of Daniel Radcliffe, an English actor. He rose to fame at age 12 when he began portraying Harry Potter in the film series of the same name. Radcliffe portrayed Potter in all 8 films in the series, beginning with Harry Potter and the Philosopher's Stone and concluding with Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Let's listen to the theme of Harry Potter.
आज प्रतिष्ठित चित्रकार एचएस रजा की पुण्यतिथि है. उनके प्रमुख चित्र अधिकतर तेल या एक्रोलिक में बने परिदृश्य हैं, जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है और जो भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के साथ साथ इसके दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण हैं. सन 1956 में उन्हें पेरिस में प्रिक्स डी ला क्रिटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे प्राप्त करने वाले वे पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार थे. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है.
Today is the birth anniversary of Dhondutai Kulkarni, an Indian classical singer from the Jaipur Athroli Gharana. She was the last legendary exponent of orthodox Jaipur Athroli Gharana. Let's listen to her rendition.
समय हो चला है आपसे विदा लेने का. अनुमति दीजिए आकर्षिता और शिफाली
नमस्कार
कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन सुनते रहिए आप आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। नमस्कार, नमस्कार।